इतिहास की एक ऐसी किताब के बारे में सोचिए जहां महज एक शब्द के गलत अनुवाद से 200 साल का इतिहास पूरी तरह से मिट जाता है।
ये तो बहुत ही अजीब बात है,
है ना? या फिर एक ऐसी समय रेखा जहां एक राजा की पहचान बदलने से एक पूरे राष्ट्र की कहानी नई दिशा में मुड़ जाती है।
तो स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस ऐतिहासिक यात्रा में हम यही देखने वाले हैं।
बिल्कुल। और आमतौर पर ना, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर की उम्मीद करते हैं।
हाँ, जैसे किसी म्यूजियम में रखी कोई प्राचीन वस्तु हो।
सही कहा। या किसी पत्थर पर उकेरी गई कोई तारीख। मतलब हमारा इंसानी दिमाग चाहता है कि हर घटना एक तय खांचे में फिट हो जाए, एक साफ और सटीक समय रेखा में।
हाँ, इससे दुनिया के अतीत को समझने में एक तरह का सुकून मिलता है।
लेकिन इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं होता।
बिल्कुल नहीं। ये इंसानी फितरत है कि हम हर चीज को एक गणित के सवाल की तरह देखना चाहते हैं, जिसका बस एक निश्चित उत्तर हो।
हाँ, 2+2=4 टाइप का।
बिल्कुल। लेकिन प्राचीन इतिहास और खासकर प्राचीन मध्य पूर्व और बाइबल के इतिहास की गहराइयों में उतरने पर वो साफ तस्वीर पूरी तरह से धुंधली हो जाती है।
मतलब पजल के टुकड़े ही बदल जाते हैं।
हाँ, ये एक ऐसी पहेली को सुलझाने जैसा है जिसके टुकड़े समय, अनुवाद और अलग अलग नजरियों के साथ अपना आकार ही बदल लेते हैं। यहाँ कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है।
और इसी अनिश्चितता और रहस्य को सुलझाने के लिए आज का ये गहरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मिशन पर आधारित है।
आज हम डॉक्टर रॉबर्ट वेनॉय के ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री के लेक्चर 30 के नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं।
बिल्कुल। और हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो ये है कि जोसेफ असल में मिस्र कब पहुंचे थे।
हाँ, इजिप्ट में उनका प्रवेश कब हुआ था।
सही। क्या वे हिक्सोज नाम के विदेशी लोगों के शासन से पहले मिस्र आए थे या फिर उनके शासन के दौरान?
देखिए, ये सवाल सुनने में शायद किसी इतिहास की किताब के एक छोटे से फुटनोट जैसा लगे।
हाँ, मतलब आम लोगों के लिए तो ये बस एक डेट है।
बिल्कुल। लेकिन इस एक ऐतिहासिक घटना का सही समय तय करना बहुत ही गंभीर विषय है। ये महज कुछ 100 सालों को आगे पीछे करने का खेल नहीं है।
तो इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है।
बहुत बड़ा असर पड़ता है। जोसेफ के मिस्र में प्रवेश का समय सीधे तौर पर एक दूसरी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, एक्सोडस।
अच्छा, यानी इसराइलियों के मिस्र से निकलने की कहानी।
बिल्कुल। अगर हम जोसेफ के समय को गलत आंकते हैं तो एक्सोडस का पूरा समय उस दौर के मिस्र के फैरो की पहचान और इसराइलियों के मिस्र में रहने की पूरी अवधि बदल जाती है।
बाप रे, मतलब एक पन्ना पलटता है और इतिहास की पूरी किताब का अर्थ ही बदल जाता है।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ, ये सच में एक बड़ा मुद्दा है। मतलब अगर एक ईंट खिसकती है तो पूरी इमारत का ढांचा बदल जाता है। लेकिन इस समय के गहरे रहस्य में उतरने से पहले डॉक्टर वेनॉय के नोट्स हमें एक और दिलचस्प उलझन की तरफ ले जाते हैं।
वो भूगोल वाली बात है ना?
हाँ, ये उलझन समय की नहीं बल्कि जमीन और भूगोल की है। सुनने वालों के लिए ये सफर ये साबित करेगा कि प्राचीन इतिहास में कुछ भी एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकता।
देखिए, डॉक्टर वेनॉय इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वे जोशुआ की किताब का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं।
हाँ, जहाँ सीमाओं का जिक्र है।
बिल्कुल। जब इसराइल के 12 कबीलों के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा था तो उसकी सीमाएं कैसे तय की गई थीं? उस समय के वर्णन में केवल भौगोलिक स्थानों और प्राकृतिक निशानों के नाम दिए गए हैं।
मतलब इस जगह से लेके उस जगह तक।
हाँ, यहाँ से वहाँ तक और फिर वहाँ से घाटी के उस पार। समस्या यह है कि हजारों साल बाद आज के समय में उन प्राचीन स्थानों, उन छोटे गाँवों या प्राकृतिक निशानों को पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया है।
जाहिर सी बात है, सदियों में तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, शहर मिट्टी में मिल जाते हैं।
सही कहा। इस वजह से एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा होती है। अगर अलग अलग बाइबल एटलस का गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि हर विद्वान ने उन सीमाओं की रेखाएं थोड़ी अलग अलग खींची हैं।
मतलब मैप्स मैच नहीं करते।
बिल्कुल नहीं करते। हालांकि हर कबीले का मूल स्थान, उनका केंद्र लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन उनके बॉर्डर की लाइनें नक्शे दर नक्शे बदलती रहती हैं।
कोई सीमा को थोड़ा उत्तर की तरफ कर देता है तो कोई थोड़ा दक्षिण की तरफ।
हाँ, और यही बात इस विषय को इतना रोचक बनाती है। हम एक ऐसे दस्तावेज का अध्ययन कर रहे हैं जो अपने समय के लोगों के लिए, उस दौर के समाज के लिए सटीक था।
वो लोग उन निशानों को जानते थे।
बिल्कुल। लेकिन आज हमारे लिए वो वर्णन महज एक अनुमान बनकर रह गया है। ये हमें सिखाता है कि प्राचीन काल में भूगोल को देखने का नजरिया आज के सैटेलाइट मैपिंग या जीपीएस जैसा नहीं था।
हाँ, वो यादों और कहानियों पर आधारित था। मतलब इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझना बहुत आसान हो जाता है।
कैसा उदाहरण?
मान लीजिए कोई आपको रास्ता बताए कि देखो सीधे जाना और उस पुराने बरगद के पेड़ से बाएं मुड़ जाना, फिर लाल रंग के पत्थर के पास से दाएं हो लेना।
हाँ, हम भारत में तो ऐसे ही रास्ता बताते हैं।
बिल्कुल, अब उस पल के लिए तो एकदम सटीक रास्ता है, लेकिन सोचिए सदियों बाद अगर कोई मुसाफिर उसी रास्ते पर चले और वो बरगद का पेड़ ही कट चुका हो।
ओहो, हाँ।
और वो लाल पत्थर किसी ने घर बनाने के लिए उठा लिया हो, तब एक नया नक्शा बनाने वाले को सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता है कि वो पेड़ शायद यहाँ रहा होगा।
ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। भूगोल की अस्पष्टता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देती है। वो ये कि प्राचीन ग्रंथों और इतिहास का विश्लेषण करते समय ना, हमारी सोच में लचीलापन होना बहुत जरूरी है।
फ्लेक्सिबिलिटी।
हाँ, आधुनिक युग की 100% सटीकता की उम्मीद प्राचीन दुनिया से करना एक बहुत बड़ी भूल होगी, और यही लचीलापन हमें आज के मुख्य विषय यानी समय की अनिश्चितता को समझने के लिए तैयार करता है।
सही बात है। अगर एक भौतिक नक्शे पर मौजूद बरगद का पेड़ सदियों बाद गायब हो सकता है, तो जरा सोचिए कि मानव इतिहास की घटनाओं की समय रेखा के साथ क्या क्या हो सकता है।
बिल्कुल।
तो जमीन के इसी लचीलेपन से आगे बढ़ते हुए अब हम समय की उस पहेली की तरफ मुड़ते हैं जो आज हमारा मुख्य रहस्य है। जोसेफ आखिर किस दौर में मिस्र पहुंचे थे?
देखिए, यहाँ स्रोतों में मुख्य रूप से अर्ली डेट थ्योरी पर बहुत जोर दिया गया है।
अर्ली डेट यानी पहले की तारीख।
हाँ, इस सिद्धांत का सीधा सा अर्थ ये है कि जोसेफ हिक्सोस काल से पहले मिस्र आए थे।
अच्छा।
इसका मतलब है कि जब वो सत्ता में आए तब मिस्र पर विदेशियों का नहीं बल्कि मिस्र के ही मूल निवासियों का एक मूल राजवंश का राज था।
ठीक है, आइए इसको ऊपर खोल कर समझते हैं। हम बार बार इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिक्सोस, लेकिन इस पूरी पहेली को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग असल में थे कौन, और एक बाहरी समूह की वजह से मिस्र का पूरा प्राचीन इतिहास इतना क्यों लच गया है।
हिक्सोस का इतिहास सच में प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े झटकों में से एक था। मतलब मिस्र के लोग अपनी सभ्यता पर बहुत गर्व करते थे।
उनका साम्राज्य तो बहुत विशाल था।
हाँ, नील नदी की घाटी सुरक्षित थी और वे खुद को दुनिया का केंद्र मानते थे। लेकिन फिर लगभग 1750 ईसा पूर्व के आसपास एशिया के इलाके, संभवतः लेवांत क्षेत्र से एक विदेशी समूह ने मिस्र पर धावा बोल दिया।
और ये हिक्सोस थे।
बिल्कुल, ये हिक्सोस थे। उनके पास रथ और मिश्रित धनुष जैसी उन्नत सैन्य तकनीकें थीं जिनका मिस्रियों ने पहले कभी सामना नहीं किया था।
बाप रे, मतलब एक एडवांस्ड आर्मी आ गई।
हाँ, और हिक्सोस ने मिस्र के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे डेल्टा क्षेत्र कहते हैं, और लगभग 1570 ईसा पूर्व तक शासन किया।
तो ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक पूरी तरह से विदेशी शासन था जिसने मिस्र के मूल निवासियों को दक्षिण की तरफ धकेल दिया था।
तथ्य तो यही बताते हैं, उनके आने से मिस्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई।
वो तो होगा ही।
मिस्र के लोग विदेशियों को संदेह और नफरत की नजर से देखते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जोसेफ की कहानी इस हिक्सोस समय रेखा में कहाँ फिट बैठती है।
हाँ, जहाँ वो एक गुलाम के रूप में आते हैं और फिर पूरे मिस्र के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाते हैं।
बिल्कुल। क्या वे इन विदेशी शासकों के दौर में आए या उससे पहले?
और इसी बहस को सुलझाने के लिए डॉक्टर विनॉय का विश्लेषण हमें एक बहुत ही मजबूत सुराग की तरफ ले जाता है।
वो जेनेसिस वाला सुराग?
हाँ, ये सुराग जेनेसिस के अध्याय 46 आयत 34 में छिपा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सुराग किसी पत्थर पर लिखी तारीख के बारे में नहीं है, ये एक सामाजिक भावना के बारे में है, नफरत और घृणा।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। मतलब जेनेसिस 46:34 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मिस्र के लोगों के लिए सभी चरवाहे घृणित थे।
चरवाहे माने शेफर्ड्स।
हाँ, वो ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते थे जिनका पेशा जानवरों को चराना था।
अच्छा।
मिस्र की कृषि प्रधान संस्कृति में जो लोग भेड़ बकरियों के साथ घूमते थे उन्हें नीची नजर से देखा जाता था।
अब यहाँ इस थ्योरी का तर्क बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। कई सदियों पुराने ऐतिहासिक स्रोतों में हिक्सोस लोगों को अक्सर चरवाहे राजा कहा गया है ना?
हाँ, शेफर्ड किंग्स।
तो अगर हम इस जानकारी को जोड़ें तो एक बहुत ही सीधा सवाल खड़ा होता है, अगर जोसेफ उस समय मिस्र आए होते जब हिक्सोस का राज था, तो समाज में चरवाहों को घृणित क्यों माना जाता?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
मतलब अगर देश का राजा खुद एक चरवाहा है, तो चरवाहे तो समाज के सबसे सम्मानित लोग होने चाहिए ना।
यही अर्ली डेट थ्योरी का सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर उस समय मिस्र के समाज में चरवाहों से खुलेआम इतनी नफरत की जा रही थी, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाता है कि उस समय शासन हिक्सोस के हाथ में नहीं था।
मतलब गद्दी पर कोई मिस्री ही बैठा था।
हाँ, गद्दी पर किसी मूल मिस्री राजवंश का कब्जा था, जो बाहरी लोगों और उनके पेशों से घृणा करते थे। इसलिए जोसेफ का आगमन इन हिक्सोस शासकों के आने से बहुत पहले हुआ होगा।
ये तर्क सुनने में एकदम सटीक लगता है।
लगता तो है,
एक जासूसी उपन्यास के उस सुराग की तरह जो सीधे अपराधी की तरफ इशारा करता है। लेकिन इतिहास के मामलों में चीजें शायद ही कभी इतनी सीधी होती हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस तर्क में भी कोई ना कोई गहरा पेच जरूर छिपा होगा।
पेंच तो है, और वो पेंच शब्दों के गहरे अर्थ और भाषा विज्ञान में छिपा है।
अच्छा,
अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये बात सामने आती है कि कैसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक थ्योरी महज एक प्राचीन शब्द के अनुवाद पर पूरी तरह से निर्भर कर सकती है।
क्या ये पेंच चरवाहे राजा वाले अनुवाद से जुड़ा है?
बिल्कुल, सदियों से हमने मान लिया कि हिक्सोस का मतलब चरवाहा राजा होता है। लेकिन आधुनिक भाषाविदों ने जब उन पुराने शब्दों का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि हिक्सोस शब्द का सही और सटीक अनुवाद विदेशी शासक होना चाहिए।
एक मिनट, क्या?
हाँ, फॉरेन रूलर्स। इसका चरवाहों या भेड़ बकरियों से कोई लेना देना ही नहीं है।
ओह, तो अगर उनका चरवाहों से कोई संबंध ही नहीं था और वे महज विदेशी सैन्य शासक थे, तो फिर वो पुराना तर्क तो पूरी तरह से ढह जाता है।
बिल्कुल ढह जाता है।
अगर वे सिर्फ विदेशी थे, तो मिस्र के आम लोग चरवाहों से नफरत करना जारी रख सकते थे, भले ही महल में हिक्सोस राज कर रहे हों।
ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। इस नए अनुवाद की वजह से वो सुराग अब उतना मजबूत नहीं रहता।
मतलब थ्योरी कमजोर पड़ गई।
हाँ, ये बात दिलचस्प जरूर है, लेकिन इसे एक अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता। अनुवाद की ये छोटी सी भूल भुलैया दिखाती है कि इतिहास कितनी आसानी से करवट ले सकती है।
सच में एक शब्द का अर्थ बदलने से इतिहास का पूरा नजरिया कैसे पलट सकता है, ये हैरान करने वाला है।
खैर, अनुवाद की इस भूल भुलैया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर वेनोए के नोट्स हमें कहानी के एक नए मोड़ पर ले जाते हैं।
हाँ, एक नए राजा की एंट्री।
बिल्कुल, यहाँ एक ऐसे शासक की एंट्री होती है जिसने सचमुच इतिहास का रुख बदल दिया।
हम यहाँ एक्सोडस अध्याय 1 की आयत 8 की बात कर रहे हैं।
एक्सोडस 1:8।
हाँ, इस आयत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है कि मिस्र में एक नया राजा सत्ता में आया जो जोसेफ को नहीं जानता था।
और ये नया राजा कौन था, ये भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। अर्ली डेट थ्योरी के अनुसार ये कोई मिस्री राजा नहीं था, बल्कि ये नया राजा एक हिक्सोस शासक ही था।
देखिए, इस परिकल्पना को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखना होगा। अक्सर ये माना जाता रहा है कि जब हिक्सोस ने मिस्र पर कब्जा किया, तो इजरायली और हिक्सोस स्वाभाविक रूप से दोस्त बन गए होंगे।
अच्छा, क्योंकि वे दोनों ही मिस्रियों की नजर में बाहरी थे। बिल्कुल वही वाला लॉजिक, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है।
ये सोचना तो बहुत आसान है।
लेकिन डॉक्टर वेनोए यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। अगर इजरायली और हिक्सोस सच में इतने अच्छे दोस्त थे, तो 1570 ईसा पूर्व के आसपास, जब मिस्र के मूल निवासियों ने आखिरकार बगावत करके हिक्सोस को देश से बाहर निकाल फेंका, तो उन्होंने इजरायलियों को बाहर क्यों नहीं निकाला?
ओहो, ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब अगर मैं किसी ऐसे विदेशी राजा को अपने देश से खदेड़ दूंगा जिसने सालों तक मुझ पर शासन किया है, तो मैं उस राजा के हर सहयोगी, हर दोस्त को भी सीमा के पार कर दूंगा।
बिल्कुल करेंगे आप।
लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तो ये बताते हैं कि इजरायली तो मिस्र में ही रहे।
तो इस स्थिति से केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हिक्सोस और इजरायली दोस्त नहीं थे, वे सहयोगी भी नहीं थे।
बल्कि वे दुश्मन थे।
बिल्कुल, और यही हिक्सोस शासक ही था, वो नया राजा जो जोसेफ को नहीं जानता था, जिसने सत्ता में आने के बाद इजरायलियों को एक खतरे के रूप में देखा, उसी ने उन पर अत्याचार करना शुरू किया और अंततः उन्हें गुलाम बना लिया।
यहाँ पे बात सच में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नए राजा ने अत्याचार आखिर शुरू क्यों किया, तो हमें एक्सोडस 1.9 और 1.10 की तरफ देखना पड़ता है।
हाँ,
और यहाँ फिर से अनुवाद का एक बहुत बड़ा खेल सामने आता है। किंग जेम्स वर्जन और एनआईवी अनुवादों के बीच का अंतर पूरी कहानी को बदल देता है।
अनुवाद की ये समस्या तो इतिहास में बार बार सामने आती है।
बिल्कुल।
अच्छा, इन दोनों वर्जन में क्या मुख्य अंतर देखा जा सकता है?
देखिए, किंग जेम्स वर्जन के अनुसार राजा ने अपनी जनता से कहा कि देखो, इसराइल के बच्चे हमसे ज्यादा और ताकतवर हैं। लेकिन वहीं एनआईवी अनुवाद कहता है, इसराइली हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब अगर कोई किंग जेम्स वाले अनुवाद को बिल्कुल उसके शाब्दिक अर्थ में ले ले, तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि इसराइलियों की आबादी पूरे मिस्र की विशाल आबादी से भी ज्यादा हो गई थी।
और प्रसिद्ध इतिहासकार ग्लीसन आर्चर के अनुसार ये बात व्यवहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है।
हाँ, लॉजिकल तो नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं। प्राचीन मिस्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले साम्राज्यों में से एक था। ये मान लेना कि इसराइलियों का एक समूह जो शुरुआत में केवल कुछ दर्जन लोगों का था, वो महज कुछ पीढ़ियों में पूरे मिस्र की आबादी को पार कर गया, ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी।
तो फिर उस आयत का सही मतलब क्या है? मतलब वो राजा आखिर किस चीज से या किसकी संख्या से इतना डर रहा था कि उसने गुलामी की प्रथा शुरू कर दी?
आर्चर इसका एक बहुत ही शानदार समाधान पेश करते हैं। उनका कहना है कि इसराइलियों की संख्या पूरे मिस्र की आबादी से ज्यादा भले ही न हुई हो, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि उनकी संख्या हिक्सोस के योद्धा वर्ग से ज्यादा हो गई हो।
आहा, वॉरियर कास्ट, मतलब जो वर्ग शासन कर रहा था, वो असल में मुट्ठी भर लोगों का एक सैन्य कुट था।
बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, हिक्सोस बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे। वे राज तो कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी सैन्य शक्ति संख्या में बहुत सीमित थी।
वो माइनॉरिटी में थे।
हाँ, वे एक विशाल विदेशी आबादी पर शासन करने वाले अल्पसंख्यक शासक थे। जब उन्होंने देखा कि इसराइलियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो उन्हें एक गहरा राजनैतिक डर सताने लगा
कि कहीं बगावत ना हो जाए।
बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर युद्ध हुआ तो कहीं ये लोग बगावत न कर दें या उनके अन्य दुश्मनों के साथ हाथ न मिला लें। इसी असुरक्षा की वजह से हिक्सोस राजा ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया।
एक मिनट रुकिए, ये थ्योरी सुनने में तो बहुत ही मजबूत लग रही है। इसमें हर चीज एक तार्किक खांचे में फिट होती दिखाई दे रही है। नया राजा हिक्सोस है, वो अपनी सीमित सैन्य संख्या से डरता है और फिर अत्याचार शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ मुझे इतिहास की टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दे रही है।
अच्छा, वो दरार किस तरह की है?
देखिए, हम कह रहे हैं कि हिक्सोस राजा इसराइलियों से डर गया और उसने जुल्म करना शुरू कर दिया।
हाँ।
और हमने अभी ये भी चर्चा की कि 1570 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के मूल निवासियों ने इन हिक्सोस शासकों को खदेड़कर देश से बाहर निकाल दिया था।
बिल्कुल।
अब सवाल ये है कि अगर इसराइलियों पर हिक्सोस जुल्म कर रहे थे और उन हिक्सोस को ही निकाल दिया गया, तो फिर इसराइली उसी वक्त आजाद क्यों नहीं हो गए? एक्सोडस की घटना तो उस समय की नहीं है।
सही पॉइंट है।
इस अर्ली डेट थ्योरी के अनुसार तो एक्सोडस की घटना काफी बाद की है। ये थ्योरी तो यहीं पर टूट जाती है ना?
सच कहूं तो ये एक बहुत ही तीखा और सटीक विश्लेषण है, और यहीं पर इस अर्ली डेट थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आती है।
तो फिर विद्वान इसे कैसे समझाते हैं?
इस सवाल का जवाब देने के लिए और पूरी कहानी की समय रेखा को मिस्र के 18वें राजवंश तक खींचने के लिए विद्वानों को एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ता है।
18वां राजवंश? इसका यहाँ क्या महत्व है?
हिक्सोस के निकाले जाने के बाद मिस्र में 18वें राजवंश का उदय हुआ, जिसमें थुटमोस जैसे शक्तिशाली फैरो हुए। ये मिस्र का एक तरह से स्वर्ण युग था।
अच्छा, गोल्डन एज।
हाँ, तो अर्ली डेट थ्योरी का समर्थन करने वाले कई विद्वान चाहते हैं कि एक्सोडस की घटना इस 18वें राजवंश के समय में फिट हो जाए।
ओके।
लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक्सोडस ग्रंथ के अध्याय 1 की आयत 14 और 15 के बीच एक लंबा समय का अंतराल या इनविजिबल गैप मानना पड़ता है।
समय का अंतराल?
हाँ,
मतलब वे ये मान लेते हैं कि ग्रंथ में कुछ दशकों या सदियों की बात लिखी ही नहीं गई है।
तथ्य तो यही इशारा करते हैं, मूल ग्रंथ सीधा आगे बढ़ता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इतिहासकारों को ये मान के चलना पड़ता है कि हिक्सोस के जाने के बाद जब मूल मिस्रियों ने सत्ता वापस ली, तब भी उन्होंने इसराइलियों पर अत्याचार करना जारी रखा।
मतलब एक अत्याचारी गया और दूसरे ने उसकी जगह ले ली बिना किसी बदलाव के।
हाँ, और ये सब उस अंतराल के बीच हुआ जिसका उल्लेख ग्रंथ में है ही नहीं।
लेकिन अगर मूल ग्रंथ में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक बहुत बड़ा अनुमान हुआ ना?
बिल्कुल।
मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी किताब का एक पन्ना गायब था और कहानी को अपनी मनचाही दिशा में ले जाने के लिए हमने अपनी मर्जी से उसमें कुछ लिख दिया।
देखिए, इतिहासकार अक्सर अपने सिद्धांतों को सही साबित करने के लिए बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार जब कड़ियां नहीं मिलती तो वे उन्हें भरने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं।
वो गैप्स फिल करते हैं।
हाँ, ये असंभव नहीं है कि मिस्रियों ने अत्याचार सच में जारी रखा हो, लेकिन ये कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। ये महज एक परिकल्पना है जिसे थ्योरी को जिंदा रखने के लिए घड़ा गया है।
आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतने सारे सबूत, इतने सारे ऐतिहासिक अनुमान, भूगोल की उलझने और अनुवाद की अंतहीन बहसें। डॉक्टर वैनोय के इस पूरे विश्लेषण का आखिरी निचोड़ क्या निकलता है?
डॉक्टर वैनोय का निष्कर्ष बहुत ही संतुलित है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उपलब्ध सबूत पूरी तरह से किसी एक पक्ष में नहीं झुके हैं।
कोई एक पक्का सबूत नहीं है।
बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई एक ऐसा पक्का प्रमाण है जो सारी बहस को खत्म कर दे, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि जोसेफ लगभग 1900 और 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय मिस्र आए थे।
ओके।
ये भी संभव है कि जब वे आए हों तब हिक्सोस वहां पहले से ही मौजूद हों, क्योंकि हिक्सोस के मिस्र में प्रवेश का शुरुआती समय भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
मतलब शुरुआत भी धुंधली है।
हाँ, हिक्सोस के निकाले जाने के बाद का मिस्र का इतिहास काफी हद तक साफ है, लेकिन उससे पहले का समय, वही समय जहां जोसेफ की कहानी घटित होती है, वो इतिहास के घने कोहरे में आज भी धुंधला है।
तो सुनने वालों के लिए ये सफर सिर्फ इतिहास की एक पुरानी घटना के बारे में नहीं था, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबक है कि इतिहास महज पत्थरों पर उकेरी गई तारीखें या म्यूजियम में रखी कोई बेजान वस्तु नहीं है।
ये सच है। इतिहास इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम आज उन प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद कैसे करते हैं।
बिल्कुल, जैसे वो विदेशी शासक और चरवाहे वाली बात।
हाँ, हम एक शब्द का क्या अर्थ निकालते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन पन्नों को समय की आंधी ने नष्ट कर दिया है उनके खाली स्थान के बीच हम क्या अनुमान लगाते हैं।
आज हमने गहराई से देखा कि कैसे अनुवाद के एक छोटे से अंतर ने एक पूरी ऐतिहासिक थ्योरी की नींव हिला दी, और कैसे एक आयत से दूसरी आयत के बीच के खाली समय को भरने के लिए विद्वानों को अपनी तरफ से पूरी कहानी घड़नी पड़ी।
सच कहूं तो ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत को वास्तव में कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमारी समझ कितनी नाजुक है।
बिल्कुल, और इसी बात से आज के स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ जो सोचने पर मजबूर कर दे।
वो क्या है?
देखिए, आज हम प्राचीन ग्रंथों के एक एक शब्द, एक एक लाइन के अनुवाद पर इतनी लंबी बहस कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 2 या 3 हजार साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इस दौर को कैसे समझेंगे।
अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा ख्याल है,
है ना? कल्पना कीजिए, वो हमारे आज के डिजिटल रिकॉर्ड्स, हमारे ईमेल्स और हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होंगे।
वो भी टूटे फूटे रिकॉर्ड्स।
बिल्कुल, अगर किसी बड़े सर्वर क्रैश या तकनीकी आपदा की वजह से उनके पास हमारे इस विशाल डिजिटल इतिहास का सिर्फ एक अधूरा या गलत अनुवादित हिस्सा ही बचे तो क्या होगा?
तो वो भी शायद ऐसे अनुमान लगाएंगे।
हाँ, क्या वे हमारे दौर की अलग अलग घटनाओं के बीच कोई अपना खाली अंतराल मान लेंगे?
ये बहुत संभव है कि भविष्य के भी इतिहासकार हमारे किसी सामान्य से इंटरनेट मीम या मजाक को किसी बहुत ही गंभीर राजनीतिक आंदोलन का नाम दे दें।
हाँ हाँ, बिल्कुल। और अपनी अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए पता नहीं वे हमारे बारे में कौन सी नई और मनगढ़ंत कहानी गढ़ लेंगे।
ये सोचना थोड़ा डरावना भी है और मजेदार भी।
सच में, पहेली के टुकड़े हमेशा अपना आकार बदलते रहेंगे, चाहे वो प्राचीन मिस्र के रेत में दबे हों या भविष्य की किसी डिजिटल दुनिया के सर्वर में। समय की अनिश्चितता ही इतिहास का सबसे बड़ा सच है। तो आखिरकार पहेली के इन टुकड़ों पर विचार करते रहिए और अपनी खोज जारी रखिए।